शांति। हम सब के बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी पहुंच चुके हैं। हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी, 1969 से ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन, मनन, चिंतन, स्मरण कर रही हैं। आप 1972 से इस विश्व व्यापी ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आपने 21 वर्षों तक गुजरात में संचालिका के रूप में बेहद सेवाएं की और अब माउंट आबू हेडक्वार्टर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आप प्रभागों में, हमारे 20 प्रभागों में उद्योग और व्यापार प्रभाग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। ऐसी त्याग तपस्या की धनी, ऐसी ज्ञान की विदुषी, प्रखर वक्ता को हम आमंत्रित करते हैं कि मनसा निराकारी, वाचा निरंकारी और कर्मणा मनसा निर्विकारी, वाचा निरंकारी और कर्मणा निरंकारी कैसे बने, इस पर अपना उद्बोधन महावाक्य अनुभव युक्त हम सबको प्रदान करें। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन में आकर खुश है ना सभी? अच्छा लग रहा है। भक्ति के यादगार शिव की काशी से, चैतन्य शिव बाबा की सच्चे काशी में आए हैं, है कि नहीं है? मधुबन को क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल चैतन्य काशी कहेंगे ना, क्योंकि साक्षात शिव बाबा आए हैं। तो आपको तो बड़ा खुशी रहती होगी है कि सारी दुनिया शिव काशी, शिव काशी कहते रहते हैं ना। और है भी यादगार विश्वनाथ की, कितनी भावना से भक्त शिव को याद करते हैं। तो अपने आप को भी चेक करने को मिलता है कि हमें तो सचमुच शिव बाबा मिले हैं, तो हम इतनी भावना से, एकाग्रता से बाबा को याद करते हैं। लोग कहाँ कहाँ से काशी में आते हैं, तो काशी वाले कहाँ कहाँ से मधुबन आए हैं? आप भी तो दूर दूर से आए हैं ना? और सभी अमूल्य रत्न है, क्योंकि जहाँ इतनी भक्ति चलती हो वहाँ ज्ञान को परखना तो बहुत बड़ी चीज है ना? सारे भक्ति के खां बैठे हुए हैं वहां, विद्वान लोग है ना, शास्त्रों की अथॉरिटी वाले। और उसके बीच में आपने बाबा के सत्य ज्ञान को पहचान लिया, तो आप तो बहुत विशेष हो गए ना। भक्ति का गढ़ है ना, वहां से भी बाबा ने अपने बच्चे ढूंढ लिए। कितनी बड़ी बात है। तो पक्का परख लिया ना सबने, ऐसे तो नहीं ना शिव बाबा की मुरली भी सुने और शिवजी पर लोटी चढ़ाने भी जावे, ऐसे तो नहीं है ना। भक्ति में शिव बाबा पर जल चढ़ाते हैं और संगम युग में शिव बाबा हमारे पर ज्ञान की बरसात करते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, जो पिया के साथ है, तो बाबा तो बरसात करते, हम तो कितना लेके जाते थे भक्ति में। हाँ, छोटी सी लोटी लेके जाते थे, शिव जी पर चढ़ाते हैं ना, वो भी प्योर दूध तो कोई नहीं चढ़ाता होगा, पानी मिला के चढ़ाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, पानी मिला के ही चढ़ाना ऐसा नियम है? हाँ। तो पता नहीं क्यों लोग ऐसे करते। और बाबा तो पूरा बरस रहा है हम बच्चों पर, है ना। तो एक तरफ भक्ति, एक तरफ ज्ञान, हम बच्चों ने बाबा को पहचान लिया। सिर्फ पहचाना नहीं, बाबा की पूरी शिक्षाएं भी प्राप्त की है, है ना? की है ना, सबने अच्छी पढ़ाई की है ना। हाँ, मुरली की पढ़ाई करते हैं ना रोज, तो पूरी शिक्षाएं बाबा की पाली है। इसलिए हरेक का पक्का लक्ष्य है कि बाबा जैसा बनना है। और हम रोज बाबा को याद करते हैं तो नेचुरली जिसको याद करते हैं उनके जैसे अपने आप बनते जाते हैं, है ना? आप जिसको रोज याद करेंगे वही अंत में भी याद आएगा, है ना? इसलिए आते हैं ना कि वे अंत में शिव की याद रहे तो काशी में जाके शरीर छोड़े। हम रोज इतना बाबा को याद करते हैं कि हम कहीं भी हों पर बाबा की याद में शरीर छोड़े और कोई याद न आए। और अंत में वो ही याद आता है जो जीवन भर याद किया है, वरना तो देखते हो ना कि विचारों को कान में भगवान की याद दिलाते हैं तो भी याद नहीं आती है, क्योंकि जीवन भर याद किया हो तो याद आएगा ना। तो जीवन भर जो याद करते हैं वो अंत में याद आता है। तो अपने आप में देखना है कि अब हमारी लगन किससे लगी हुई है। ये चेक करना है। देखने में तो हम ज्ञानी हैं, योगी हैं, सफेद वस्त्रधारी हैं, पर अपने अंदर में जाकर चेक करना है कि हमारी लगन किससे लगी, अभी भी लगन किससे है। कई सोचते हैं ना, बस ये काम हो जाए फिर तो बाबा ही बाबा है। माना अभी भी लगन कहाँ है, थोड़ा अभी ये कामकाज है इसलिए पुरुषार्थ ढीला है, वो हो जाएगा फिर बस बाबा ही बाबा करना है। हर कोई घर में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं, ये बहुत सूक्ष्म है कि उस पथ को अपनाने के बाद भी लगन कहाँ है। सच में योग बाबा से रहे, है ना? प्राप्ति वो ही आत्मा कर पाती है ना जिसको लगन लग जाए, धुन लग जाए। भल पुरुषार्थ तो जो रोज करते हैं वो ही करना है। घर बार संभालते हैं और जो टाइम मैक्सिमम निकाल सकते हैं वो अब हम कहीं और नहीं खर्च करते हैं, बाबा और सेवा में ही खर्च करते हैं। पर एक लगन चाहिए, है ना? कोई भी सिद्धि तभी मिलती है जब एकाग्रता से, निष्ठा से, समर्पणमयता से पुरुषार्थ किया जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने पूरे संगम युगी जीवन का सार अंत में इन तीन शब्दों में कहा। हमें तो तैयार मक्खन मिल गया। बाबा ने तो पूरी जीवन लगाई, पढ़ाई की और सार रूप में ये तीन बातें बाबा कह कर गए। तो हमें उसी पर फोकस करना है, ज्ञान का विस्तार तो बहुत है पर हम सार पर अटेंशन रखते हैं। जो बाबा ने बताया, खैर बाबा के ज्ञान की शुरुआत हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तो निराकार स्वरूप से ही होती है ना। प्रथम पाठ ही हमें निराकारी बनाता है। भगवान का प्रथम पाठ आप आत्मा है, ज्योति बिंदु है। ये पहला पाठ ही देहभान से मुक्त करता है। इसी एक पाठ ने जीवन बदल दिया ना। कहां देह अभिमान में फंसे थे, जिस देह अभिमान के कारण देहधारियों में ही फंसे थे, दैहिक दुनिया में ही बुद्धि योग था, भौतिक पदार्थों के पीछे ही लगे हुए थे क्योंकि खुद को ही भौतिक समझ रहे थे। शरीर क्या है, शरीर क्या है? भौतिक है। शरीर तो तत्वों से बना है ना, ये तो मटेरियल है ना, मैटर से बना है। तो नेचुरली जब खुद को ही हम भौतिक समझते हैं, शरीर समझते हैं, तो शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं पहले उसमें बुद्धि जाती है, फिर फिर आवश्यकताओं में इच्छाएं मिलती हैं तो आकर्षण होते हैं, है ना, फिर वो विस्तार हो जाता है। तो हमारी तो साधना ही निराकार स्वरूप की, ना हम अपने आप को साकारी मानते हैं, ना कोई शरीरधारी को याद करते हैं। भक्ति में भी तीन लेवल बताते हैं ना, कि स्थूल, सूक्ष्म और मूल। कि भाई एक मूर्ति रखकर भगवान को याद करते हैं तो वो स्थूल भक्ति है, वही मूर्ति मन में याद करते हैं, मानसिक रूप से याद करते हैं, साधन का सहारा नहीं लेते हैं, पर मन में समझो कृष्ण का रूप लाकर याद करते हैं, तो वो सूक्ष्म आकारी भक्ति। और मूल का तो ज्ञान ही नहीं है उनको, वो तो बिचारे तत्व को याद करने लगते हैं फिर निराकार में। पर बाबा ने तो हमें पहला ही पाठ पढ़ाया, ये जो देखने में आ रहा है वो आप नहीं है, कितना बड़ा सत्य बाबा ने बता दिया। जो दिखाई दे रहा है वो आप नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है उसे याद करना है। साकार मुरली में भी आता है ना, कि जो सुना हुआ है वो भूल जाना है, जो कभी भी नहीं सुना है वो बाप सुनाते हैं वो सुनना है। तो बाबा ने स्थूल स्वरूप से निकाला कि आप ये नहीं हैं, आप इनसे अलग हैं। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास नित्य हमें करना है, इसलिए बाबा रोज बार बार वही मूल अभ्यास हमें कहते, हर मुरली में यही बात आती है ना, अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद कर। कोई समझते हैं कि बाबा एक ही बात करते रहते हैं, पर ये मूल बात है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए बाबा बार बार करते हैं। इसलिए हम बाबा की याद में बैठते हैं, रोज हम ये अभ्यास करते हैं, हम बैठते ही सीधा बाबा से बातें नहीं करने लगते, पर हम अपने आप को पहले अपनी वास्तविकता में, हम अपनी सत्यता में पहले अपने आप को स्थित करते, हम स्वयं की रियलिटी को रिवाइज करते, ऑटो सजेशन, खुद खुद को याद कराते। कि मैं वो ही शुद्ध आत्मा हूं, सत्य आत्मा, मैं स्वयं बिंदु ज्योति हूं, मैं शक्ति हूं, लाइट हूं। हम खुद खुद को याद कराते हैं, महसूस कराते हैं, रिपीट नहीं करते, रियलाइज कराते हैं। कि मैं इस आकार में बिंदु ज्योति हूं। और रोज की मुरली में बाबा ये सिखाते हैं, बच्चे तुम कानों द्वारा सुन रहे हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं। बाप भी इसके मुख से बोलते, ये बाबा अभ्यास खुद करते थे, कराते थे। बाबा की जीवन कहानी तो पढ़ी है ना सबने, पढ़ी है? हाँ, नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। साक्षात्कार के बाद जब बाबा ने सब समेट लिया, घर में सत्संग शुरू किया, कौन सा पाठ बाबा ने पक्का किया? मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, राधे आत्मा है, नारायण आत्मा है, पूरे परिवार के लिए आत्मिक दृष्टि का पाठ पक्का किया, आत्मस्मृति का पाठ पक्का किया। साधना का फाउंडेशन आत्मभिमानी स्थिति है। भगवान को तो भक्ति में भी याद करते थे ना, वो अभ्यास तो है ही भगवान को याद करने का, पर कौन सा अभ्यास नहीं था? आत्मा समझ नहीं है। तो उसके लिए मेहनत है। भगवान को तो द्वापर से याद किया है, तो उसको याद करने का अभ्यास है, सिर्फ सही परिचय नहीं जानते थे। तो हमें भी वो अभ्यास करना है। नोटबुक लाए हैं ना, लिखो जैसे बाबा ने लिखा ना, आप अपने परिवार का लिखो। आपके परिवार में जो भी है, पति है, पत्नी है, जितने भी बच्चे हैं, सबके नाम लिखो, लिखो ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, बेटा भी आत्मा है, बच्ची भी आत्मा है, पति भी आत्मा है। अपना वृक्ष लिखो, हा? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इतना तो लिखो। वो मन में पक्का करो, मन से बोलो। बल्कि रोज ये पक्का करना, हमारी तपस्या का पहला अभ्यास है खुद को आत्मा समझना, देहभान से न्यारा होना। उनको ये सत्य नहीं पता था, इसलिए बेचारे वो घर बार छोड़ के गए, है ना? भगवान में मन लगाने के लिए वे दुनिया को छोड़कर गए जंगलों में, गुफाओं में, क्योंकि उनको ये सत्य पता नहीं था। बाबा ने हमें बताया दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान छोड़ने की जरूरत। बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की जरूरत। बाबा ने तो बता दिया है ना कि देह अभिमान सभी बुराइयों का मूल कारण है, सभी विकारों की उत्पत्ति का बीज देह अभिमान है। और देहभान मिटाने का सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया, वो नहीं जानने के कारण उन्होंने देह दमन की क्रियाएं की। कितना कष्ट उठाया, क्योंकि योगी बनना था। देखो लगन कितनी थी, लगन कितनी थी तो मेहनत कितनी की उन्होंने। हमें तो बाबा ने सत्य बता दिया है, हमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, खोज की बात नहीं है, भटकने की बात नहीं है, पुरुषार्थ करने की बात है, मेहनत की बात नहीं है। बिना सत्य ज्ञान के जो कुछ करेंगे वो मेहनत है। ज्ञान समझ कर लक्ष्य पूर्वक जो अभ्यास करते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं, हम मेहनत नहीं करते, हम भटकते नहीं। हमें बाबा ने सिंपल बात बता दी कि दुनिया से दूर जाने की जरूरत नहीं है, देहभान से न्यारा होने की जरूरत। और देहभान से न्यारा होने के लिए वे देह को कष्ट देते हैं, है ना? इंद्रियों का दमन करते हैं, इसलिए देहभान से न्यारे होते हैं पर आत्माभिमानी नहीं बनते हैं बेचारे। बाबा ने सिंपल अभ्यास बताया, देहभान से न्यारा होना है तो खुद को आत्मा समझना है। तो खुद ही खुद को डिटैच करो, इस ढांचे में मैं अलग ज्योति बिंदु महसूस करो बार बार। बाबा ने पूरी दृष्टि बदल दी हमारी। कि शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, उनको स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, अभिमान में नहीं आना है। वो अटेंशन रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं हर दैहिक क्रिया करते बाबा को याद करो, आत्माभिमानी बनकर करो, ताकि देहभान न आवे। देह को, देह के भान को भूलना है, कॉन्शियसनेस चेंज करनी। बाकी इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना, शरीर साधन से ही तो कर्म करेंगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट को तो मेंटेन करना है। पर अभिमान ना आ जावे इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्नान करते भी बाबा को याद, ड्रेसअप होते हो तो भी बाबा को याद कर। बाबा पूरी दृष्टि चेंज करते हैं ना, कि वे इस मंदिर को साफ कर रहे हैं, ये सारा पुरुषार्थ क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें कोई हठयोगी की तरह जंगली बाबा बन के नहीं बैठना है ना। स्वच्छ स्नान भी करना है, रॉयल व्यवस्थित भी रहना है, पर अभिमान में नहीं आना है। तो एक तो शरीर को साफ करने की और ड्रेसअप करने की क्रिया है, वो बॉडी कॉन्शियस बना सकती है। तो समय खास याद रहे कि मैं आत्मा, क्यों सिंपल ड्रेस, क्यों सफेद वस्त्र, माना योगी क्यों सादा सरल जीवन बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है ना। बहुत ज्यादा फैशन करेंगे, ड्रेसअप होंगे, बहुत मेकअप करेंगे, तो आप बॉडी कॉन्शियस बनेंगे। और दूसरी क्रिया है भोजन। देह भान भूलना है, पर देह को बना के तो रखना है। इसलिए बाबा ने दो चीजें सिखाई, कि सात्विक शुद्ध भोजन और बाबा को भोग लगा कर खाओ। अपनी थाली में पहले बाबा को याद करो, वो एक मिनट आधी मिनट की याद भी भोजन के स्वाद से डिटैच करते हैं। तो जो खाऊं 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 होता था वो नहीं होगा। बाबा को भोग लगाने में अपने आप डिटैचमेंट हो जाता है। और बाबा ने कहा है कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, है ना? क्योंकि इंद्रिय रस बॉडी कॉन्शियस बनाते हैं। क्योंकि जितना इंसान बॉडी कॉन्शियस बनेगा, इंद्रिय रसों का आकर्षण होगा, देखने का रस, देखने का रस, कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, देखने का रस। आपका कोई कनेक्शन नहीं है पर आदत पड़ गई है ना देखने का रस। रास्ते पर जाते हैं तो कितना लगा हुआ होता है होर्डिंग्स, बड़े बड़े चित्र, सुनने का रस, अनावश्यक सुनना, आजकल कान में डाल के ही रखते हैं, सुनने का रस। बैठी हूं यहां पर सुनने का रस है तो अटेंशन वहां कि वो क्या बात कर रहे हैं। खाने का रस, बाबा कहते खाऊं खाऊं खाऊं, आज ये बनाएंगे आज वो बनाएंगे। योग में भी वही प्लानिंग, स्वाद। क्यों भक्ति में उपवास करते हैं? क्यों बाबा ने सात्विक शाकाहारी भोजन, पवित्र भोजन के नियम से कितना संयम आ गए, वरना जहां तहां खाते रहते थे। घर से खा के निकलेंगे तो भी कोई कहेगा, वहां भी खाने बैठ जाते थे। आवश्यकता है या नहीं, नहीं पर स्वाद, बोलने का रस, बात करने का रस, शांत बैठ नहीं सकते, फ्री हैं, कुछ काम नहीं है तो ढूंढेंगे, कोई आवे तो बात करे, कोई आवे तो बात कर, क्योंकि बाबा को याद करने का अभ्यास नहीं। ये रस है सारे, जितना बॉडी कॉन्शियस बनते हैं उतने ये रस बढ़ते हैं। बाबा ने उनको सात्विक बनाया, सिंप्लीफाई बनाया, डिटैच किया। तो ये सारी चीजें देहाभिमान मिटाने के लिए, क्योंकि बाबा से योग लगेगा ही तब ना जब मैं देहभान से न्यारी होंगी, निराकार बन, निराकार से योग। इसलिए भगवान का पहला आदेश कौन सा है? देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध भूलो, छोड़ो, छोड़ो मीन्स भूलो। क्यों भगवान ने कहा? भल देह संबंध सुख देने वाले लग रहे हों, फिर भी अगर उसमें सच में सुख होता तो भगवान क्यों कहते हैं छोड़ो? भगवान क्यों कहते हैं छोड़ो? क्योंकि योगी आत्मा को, जो योगी बनना चाहता है, उससे तो कोई भी देहधारी में फंसना नहीं, कोई भी आत्मा में अटकना नहीं। संगम युग, भगवान से प्यार करने का समय, आत्माओं में अटकने का समय नहीं। कोई एक भी देहधारी में लगाव है तो सबसे पहले योग खत्म। आप ज्ञान अच्छा बोलेंगे तोते के मिसल, सेवा करेंगे दूसरे का कल्याण हो जाएगा पर खुद का नहीं होगा। क्योंकि संगम युग में देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा कहता है कोई कितना भी अच्छा है, गुणवान है, सुंदर है, प्यारा है, सहयोगी है, सर्विसेबल है, उसको भी प्यार नहीं करना है। ये तो भगवान को प्यार करने का मौसम है। इसलिए रोज बाबा की याद में हम बैठते हैं, डिटैच होते हैं सबसे। इसलिए बाबा कहते हैं कि 8 घंटे की डिटैचमेंट होगी तो 24 घंटे सफल होंगे। पार्ट प्ले करना है सबके साथ, पर सेकंड में कछुआ बनकर सिमट जाना है। तो ये गुप्त मेहनत खुद खुद पर करनी है। बाकी भक्ति में साकारी देवी देवताओं को तो याद करते ही थे ना। हमारे योग की विशेषता ही ये है कि हम डायरेक्ट बाबा से योग लगाते हैं। बिंदु बन बिंदु बाबा को याद कर, और इसलिए बीच में एक स्टेप बाबा ने दिया कि फरिश्ते फरिश्ता बन, फरिश्ता बाबा को याद कर। अगर आपको लगता है कि बुद्धि ऊपर से नीचे आ रही है, क्योंकि अभ्यास जितना करेंगे उतना लंबा समय हम स्थित हो सकेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि मैं आत्मा बाबा से जुड़ी हुई हूँ। भल शरीर से हम यहाँ हैं, सेवा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर मन की आंख से परम धाम में परम ज्योति बिंदु बाबा को देखते हैं। हम अपने असली शुद्ध स्वरूप में स्थित होते हैं और उनके याद और प्यार में रहते हैं। शुरुआत में आपको चिंतन करना पड़ेगा, पर जितना आपका प्यार बाबा से बढ़ता है, महसूसता बढ़ती है, फिर चिंतन ज्यादा नहीं करना पड़ता है, फिर अनुभूति में हम रह सकते हैं। और अगर उसमें नहीं स्थित हो पाते हैं तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में डबल लाइट फरिश्ता बन, संपूर्ण अव्यक्त बाप दादा को याद कर। और मनसा तूफान है, नहीं मन लग रहा है, तो बाबा कहता है साकारी याद मीन्स ज्ञान का चिंतन, बाबा से रूरीहान मधुबन की याद, ये सारे प्रयास है ना हमारे बुद्धि को बदलने के। हमें दुनिया से बुद्धि योग निकालना है। तो इसलिए निराकारी बनो। आज भी बाबा ने कहा ना कि देहाभिमान मिटाने के लिए बाबा बच्चों को कहते थे ये बर्तन साफ करके आओ, झाड़ू लगा के आओ। आज कहा ना बाबा ने कि सचमुच बाबा को पहचाना है या नहीं, कि बाबा के सामने भी वीआईपी के अभिमान में ही आए हैं। एक बच्चा कितना भी बड़ा ऑफिसर मिनिस्टर बन जाए, पर माँ बाप के आगे मैं इनका बेटा हूँ, इस स्मृति में आएगा तो माँ बाप के प्यार का अनुभव होगा। अगर माता पिता के सामने अभिमान में आया कि मैं मिनिस्टर हूँ, तो उनको माँ बाप के प्यार का अनुभव नहीं होगा। तो बाबा के सामने भी हम क्या है, क्या है, बच्चे हैं। हम तो बाबा के बच्चे हैं। लौकिक रोल में आप कुछ भी हैं, पर वो तो रोल है। बाबा के सामने वो अभिमान नहीं। आत्माभिमानी बनेंगे तो बाबा के प्यार का अनुभव हम कर सकते हैं। तो बाबा तो खुद करते थे, हर प्रकार की सेवा बाबा करते थे, बच्चों को सिखाना था ना सब कुछ। और जहाँ अपना यज्ञ अपना बाबा अपनी सेवा समझा, वहाँ कोई सवाल ही नहीं है ना कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, वो देह अभिमान रहता ही नहीं है ना। और डिटैच होंगे तो अटैच होंगे ना बाबा से, हम यहाँ ही कहीं अटैच है तो हम बाबा से जुड़ नहीं सकते। इसलिए अंतिम 18वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, इतना समझाना पड़ा उसको, लास्ट में कहता है अब मोह नष्ट हुआ, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये हमारा ही तो गायन है, क्योंकि जब तक आत्मा कहीं भी अटैच है कमजोर है। हम बाबा की हर श्रीमत का पालन करने तैयार नहीं होंगे, पर मोह नष्ट हुआ और आत्मा जाग जाती है। इसलिए मोह को कहते हैं अंधा बना देता है। अब वो मोह देह संबंधों में ही होता है ऐसा नहीं है, खुद को खुद के देह में भी मोह होता है। खुद की विशेषताओं में अटैचमेंट होता है, तो निराकारी स्वरूप बनने के लिए टोटल चेंज करना है अपने आप को, अपने आप को पूरा बदलना है, मर्जीवा बनना है। तभी हम निराकारी बन सकते हैं, देहभान से न्यारे होकर रह सकते हैं। और ये भी मैंने अनुभव किया कि जितना देहभान से न्यारे आत्मभिमानी बनेंगे तो विकार के अंश खत्म होंगे, वरना वो अंश खत्म नहीं होते। निरा आत्मभिमानी स्थिति का पाठ पक्का नहीं तो विकारी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। क्योंकि साधना का दो लक्ष्य होता है, भक्ति में भी जो लोग साधना करते हैं और टोटली मानव जीवन में धर्म आने का दो उद्देश्य रहा, आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति, उसी के लिए धर्म की रचना हुई, साधना आई। ये तो आजकल कलियुगी भक्ति अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए करने लगे हैं, वरना पुराने भक्त सच्चे भक्त तो मुक्ति के लिए योग करते हैं कि मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। और जैसा पूरा ड्रामा या 84 जन्मों का इतिहास हम जानते हैं कि आत्मा द्वापर में देहभान में आई और भगवान को याद करना शुरू किया, भक्ति शुरू की था, क्योंकि ओरिजिनली हम शुद्ध है, पवित्र है। तो अपवित्रता शुरू हुई और आत्मा को पसंद नहीं आया ना, तो देखो भगवान को याद करना शुरू किया। इसलिए योग साधना का ध्येय आत्मशुद्धि, और बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति हमारी स्मृति बदली प्रथम लेसन में कि हम आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, हम तो आपस में भाई भाई है। तो देखो वृत्ति शुद्ध हुई, ब्रह्मचर्य पालन करना सहज हो गया ना, वरना भक्ति में कहां, इतना भगवान को याद करते हैं पर कहां कोई पवित्रता का पालन करते, क्योंकि आत्माभिमानी नहीं है ना। और बाबा के सत्य ज्ञान की ये शक्ति प्रथम पाठ में ही ऐसी महसूसता हुई, जीवन में ब्रह्मचर्य धारण हुआ। तो हमारी साधना तो बहुत ऊंची है, ब्रह्मचर्य से शुरू होती है और हमारी आखिरी मंजिल कौन सी है? हाँ, संपूर्ण निर्विकारी देवता बनने की एक क्वालिफिकेशन ये भी है ना। देवताओं की महिमा में क्या क्या गाते, उसमें आता है ना एक महिमा ये भी है ना, संपूर्ण निर्विकारी। तो हमें तो वहां पहुंचना है ना, पर कर्म में ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं तो बाबा कहते हैं ना, महाशत्रु को मारने से बाकी विकार अपने आप 50% डाउन हो जाते, उसका फोर्स कम हो जाता है। पर हम तो उनको अंश वंश से खत्म करना चाहते, क्योंकि हम पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना चाहते, हम पावन दुनिया के निमित्त आत्माएं हैं। तो फाउंडेशन तो बड़ा पावरफुल चाहिए था। तो कोई भी विकार का अंश नहीं, तो हर एक अपने आप को देखें, मधुबन में आए हैं, साइलेंस में रहते हैं, स्वदर्शन करिए, देखिए खुद को। कोई भी अंश रहा तो बाबा कहते हैं ना, वंश पैदा हो जाएगा। ब्राह्मण बनकर पवित्र नहीं रहते हैं वो आत्मभिमानी बन नहीं सकते, वो पहला पाठ ही नहीं पढ़ सकते, उनकी गाड़ी आगे जा नहीं सकती। हमारा प्रथम पाठ देहभान को भूलना है, तो जो देह को भोगेगा वो कहां योगी बनेगा। जो ब्राह्मण बनकर गुस्सा करता रहेगा वो इस ईश्वरीय परिवार का प्यार नहीं पा सकता है। हर कोई कहेंगे ये बहुत गुस्सा करते हैं, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, हम अपने आप कर लेंगे, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते। ईश्वरीय परिवार का प्यार नहीं मिलेगा। वो अपनी शांत स्थिति कैसे बनाएगा? जो ब्राह्मण बनकर लोग लालच करेगा वो भाग्य नहीं बना सके। धन साधन होते हुए लोभ के कारण वो छोड़ नहीं सकेगा, सेवा में लगाएगा नहीं, वो भाग्य नहीं बना सकेगा। बाबा ने कहा है कखपन देंगे तो लखपन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। बीज बोएंगे तो मिलेगा ना, सहयोग का बीज बोएंगे तो भाग्य का वृक्ष मिलेगा, वरना किस बेस पर आपको मिलेगा? पॉइंट्स चाहिए ना, जो समय पर भगवान को मदद करता है उनको भगवान सदा मदद करने के लिए बंधा हुआ है, ऐसे थोड़ी मदद करेगा। भगवान भोला है पर बुद्धू नहीं है, जो मोह में फंसा रहेगा वो बाबा का प्यार नहीं पा सकेगा, क्योंकि जहां फंसा वहां से बुद्धि उड़ेगी नहीं, वो ईश्वर का प्यार नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि पर आत्मा छाई हुई है, वो बाबा का प्यार नहीं पा सकेगा। जहां अभिमान आया उतरती कला शुरू हुई, अभिमान आया कोई भी गुण का गुण अवगुण हो गया। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो ऐसे नहीं समझना है कि हमारा पूरा पुरुषार्थ पूरा हो गया, शुरू हुआ। बाबा बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करा रहे, जितना बाबा ऊंचा है, ब्रह्मा बाबा ऊंचा है, उतना हमें भी ऊंचा बनाना चाहता है। और जो ऐसा पुरुषार्थ करेगा वो अहम कहां करेगा बताइए? वो निरंकारी बनेगा, क्योंकि उनको पता है बनाने वाला बाबा है, हम तो निमित्त है। न सेवा का अभिमान, न सहयोग का अभिमान, न निमित्त बनने का अभिमान, यहां तो कर्ता करने कराने वाला बाबा है, हम तो निमित्त है। तो प्रैक्टिकल हम ऐसा बनते जाएंगे, बनना है ना कि इतना ही करना है, हाँ पूरा पाना है ना? अच्छे पुरुषार्थी बनना, तो चलो बाबा को याद करेंगे और कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे। सभी 2 मिनट खड़े हो जाएं। हाथ पांव स्ट्रेच करो, कमर ठीक करो। भट्टी में बैठना ही बैठना है ना, तो फिर शरीर को ठीक कर लो। थोड़ा जंप लगाओ हल्के हल्के, स्पॉट रनिंग करो। माताएं दो दो की जोड़ी बन जाओ, दो दो की जोड़ी बनकर आमने सामने खड़े हो जाइए। पहले याद करिए आज की मुरली में कौन सी बात बाबा ने बताई, याद है ना बाबा की मुरली। याद कर लो, एक पॉइंट कान में अपने पार्टनर को बताओ। आप उसको बताओ, वो आपको बताए। बताया सबने, आज जो भी क्लासेस हुए उसमें कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी, याद करो। पार्टनर चेंज कर दो, आगे पीछे आमने सामने हो जाओ, आगे पीछे आगे पीछे। इधर बहन, एक दो के पार्टनर बन जाओ, आगे पीछे चेंज कर लो। ये भी हाँ, अब बताओ कौन सी पॉइंट अच्छी लगी, एक दो को बताओ कान में। आपके पार्टनर को बताओ, डिटैच होके बताना। बताया आपने भी, दोनों ने बताया। बाबा के सामने हो जाइए। पहला अभ्यास, मैं स्वयं निराकार हूँ, ज्योति बिंदु, द बिंदु को ही निराकार कहते हैं। मैं स्वयं पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट जो देखने में आ रहा है वो शरीर है, बदलता रहता है। मैं अखंड ज्योति बिंदु हूँ। देह भान से न्यारी हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, सत्य पवित्र। राइट साइड घूम जाइए। मेरा बाबा निराकार है, परम ज्योति बिंदु है। जैसा बाबा वैसी मैं आत्मा। बिंदु बाबा की अमर संतान मैं आत्मा भी बिंदु। बाबा गुणों के सिंधु, मुझे भी बाबा के गुणों को स्वयं में समाना है। राइट साइड घूम जाए। मेरा असली घर निराकार वतन रूहों की दुनिया चैतन्य सितारों का वतन जहां स्वयं में मर्ज शांत शुद्ध स्थिति में स्थित। हम आत्माओं का असली घर असली पिता के सानिध्य में ज्योतिर्धाम में परम ज्योति के समीप मैं ज्योति बिंदु आत्मा सर्वत्र शांत निरसंकल्पता अनुभव के सागर में समाई हुई मैं आसमान। राइट साइड घूम जाए, मुझे आत्मा में अपार क्षमताएं योग्यताएं समाई हुई है। शांत और एक रस शुद्ध पवित्र मैं आत्मा। सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप अजर अमर अविनाश निरंजन निराकार शाश्वत सनातन मैं आत्मा। राइट साइड घूम जाए, असली स्वरूप में असली गुणों में असली घर में वापस मुझ आत्मा को स्थित होना है। स्वयं में खोज निजानंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ। आत्मा सर्व से साक्षी बन जाए, आवश्यक पार्ट प्ले किया और स्वयं को समेट कर साइलेंस में स्थित हो जाए। साक्षी बन हर दृश्य को देखना, सर्व के लिए शुभ भावनाएं फैलाना, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना, एक बाबा दूसरा न कोई, मैं आत्मा और मेरा बाबा। बाबा में मगन हो जाए।
प्यारे